अच्छी बात सिखाते हैं, सीधी राह चलाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद। فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله،
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله،
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله،
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله।
प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर अपने प्रोग्राम सच्ची बातें में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की खिदमत में दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरकात हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता रहता है, फरिश्ते उस पर रहमत भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है कि मुझ पर कम पढ़े या ज्यादा। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस प्रोग्राम सच्ची बातें में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें हम सीखा और सुना करते हैं। अल्लाह के आखिरी नबी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम एक बेहतरीन मुअल्लिम है, एक बेहतरीन उस्ताद है, एक बेहतरीन रहनुमा है, एक बेहतरीन लीडर है, एक बेहतरीन तरबियत करने वाले हैं। हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अपनाना चाहिए, आपके फरामीन पर अमल करना चाहिए, और आपके बड़े प्यारे प्यारे फरामीन हमें हदीसों में मिलते हैं, हमें उनको सीख कर अमल करने की भी कोशिश करनी चाहिए। हर बार की तरह हमारे आज के प्रोग्राम में भी हमारे साथ दो बहुत ही प्यारे प्यारे से बच्चे हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आइए सबसे पहले उनका तारुफ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
हाँ भाई, आप बताइए क्या नाम है और कहाँ से आए हैं?
मेरा नाम मोहम्मद शहबाज रजा अत्तारी है।
माशाल्लाह।
मैं आगरा ताज कॉलोनी लियारी कराची से आया हूँ।
अच्छा माशाल्लाह, शहबाज भाई आए हैं आगरा ताज लियारी कराची से आए हैं, बहुत बड़ा इमामा माशाल्लाह बांध कर आए हैं। और क्या करते हैं शहबाज भाई?
मैं स्कूल पढ़ता हूँ।
स्कूल पढ़ते हैं, ठीक है। कौन सी क्लास में है?
फोर्थ
क्लास में पढ़ते हैं, वेरी गुड। अच्छा, और कुरान पाक पढ़ लिया? कुरान पाक नाज़िला नहीं पढ़ा है? अरे
पढ़ा है लेकिन आधा अभी रहता।
अच्छा, कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि अभी चल रही है स्टडी, चल रही है कुरान पाक का। माशाल्लाह, चले अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो नाज़िला के बाद फिर हिफ्ज इंशाल्लाह करेंगे, और हिफ्ज के बाद फिर क्या करेंगे?
आलिम बनूंगा।
आलिम बनेंगे, और आलिम के बाद क्या बनेंगे फिर?
आलिम के बाद फिर मुफ्ती बनूंगा।
अरे वाह भाई वाह, माशाल्लाह, देखें इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े इरादे आपने किए हुए हैं, हैं?
जी।
चले अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपकी मंजिल मकसूद तक आपको पहुँचाए। बहुत अच्छे ख्यालात, बहुत अच्छी नीयतें हैं आपकी, अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप?
मेरा नाम मोहम्मद आरिस है, मैं दरियाबाद कराची से आया हूँ।
वहाँ क्या दरिया है जहाँ रहते हैं आप? दरियाबाद इसीलिए कहते हैं, दरिया है क्या वहाँ पर? फिर क्या है?
इलाके का नाम है।
इलाके का नाम है दरियाबाद, कराची से आए हैं, ठीक है। हारिस नाम है, तो क्या करते हैं हारिस भाई?
स्कूल पढ़ता हूँ।
स्कूल पढ़ते हैं, ठीक है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
फोर्थ
क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। और कुरान पाक भी पढ़ लिया? मदरसा पढ़ते हैं, मदरसा भी पढ़ते हैं माशाल्लाह, ठीक है। तो फिर क्या, नाज़िला कुरान पाक पढ़ लिया आपने?
नहीं,
अभी कुरान पाक चल रहा है माशाल्लाह। चले आपका भी सिलसिला चल रहा है, तो फिर आगे क्या इरादे हैं आपके भी?
नाज़िला
कुरान पाक पढ़ेंगे, फिर आगे हाफिज बनेंगे या आलिम बनेंगे?
आलिम
बनेंगे, ठीक है। फिर आगे मुफ्ती भी बने, ठीक है ना, दीन इस्लाम की खिदमत करें। जहाँ तक अल्लाह ताला आपसे दीन की खिदमत लेना चाहे तो आप दीन की खिदमत करें और इल्मे दीन हासिल करते हैं। क्या करें? इल्मे दीन जिस जरिए से भी मिले ना शहबाज, हासिल करना चाहिए। मदनी चैनल पर देखते रहें आप, स्टडी करें, बुक्स की स्टडी करें, किताबें पढ़ें अपनी, ठीक है ना। और इसके अलावा वाकयात सुने बुजुर्गों के, और इसके अलावा इज्तिमा में शरीक हो जाएं, इसके अलावा मदरसे में जाया करें, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें इख्तियार करेंगे ना तो हमारी नॉलेज इंक्रीज होगी, हमारी नॉलेज बढ़ेगी, हमारी मालूमात में इजाफा होगा, है ना। इंसान जितना इल्म हासिल कर सकता है उससे इल्म हासिल करना चाहिए, कहते हैं ना माँ की गोद से कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। प्यारे बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक है वुजू और दीन इस्लाम, इंशाल्लाह इस्लाम में वुजू की अहमियत और अहकामत क्या है, आज के प्रोग्राम में इसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए आज की हदीस पाक सुनते हैं। बुखारी शरीफ हदीस पाक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन उम्मती युदउना यौमल क़ियामति गुर्रम मुहज्जिलीन मिन आसारिल वुदू فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ। बुखारी शरीफ के हदीस पाक, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन मेरी उम्मत इस हाल में लाई जाएगी कि मुंह और हाथ पांव आसारे वुजू से चमकते होंगे, तो जिससे हो सके चमक ज्यादा करे।
यूसुफ भाई, आपने कहा आसारे वजू, ये आसारे वजू क्या होता है?
हाँ, आसारे वजू का मतलब क्या होता है? कयामत के दिन उम्मत को लाया जाएगा और हाथ मुंह आसारे वजू से चमकते होंगे।
अल्लाह,
आपने सुना आसारे वजू, अब आसारे वजू का मतलब शब्द क्या है? बहुत प्यारी हदीस पाक है। आसार कहते हैं निशानी, कैसे कहते हैं?
निशानी,
निशानी समझते हैं, अलामत निशानी जिसे कहते हैं। तो फरमाया कि आसार वजू से चमकते होंगे, जैसे हम हाथ धोते हैं ना वजू में, वजू का पानी जहां जहां जा रहा है ना, ये समझो आसार वजू है। अच्छा, आपने यहां तक हाथ धोया तो यहां तक आसार वजू हो गए। अब जितने आजाब को इंसान वजू में धोता है ना, कयामत के दिन ये सारे उजुब जो है ना ये चमक रहे होंगे, ठीक है। कयामत के दिन ये उजुब क्या होंगे? चमक रहे होंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितना ज्यादा धो सकते हो इतना ज्यादा, थोड़ा यानी कोली के ऊपर से धो लेना चाहिए वुजू के अंदर हाथों को, ठीक है। इसी तरह पांव धोते हैं तो पांव में भी टखने से ऊपर का जो हिस्सा है ना, यानी पिंडली तक धो लेना चाहिए, आधी पिंडली तक धो लेना चाहिए। तो आप जितने इन आजा को ज्यादा धोयोगे ना, तो उससे क्या होगा? उससे चमक में इजाफा होगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे हो सके इस चमक को क्या करें? ज्यादा करें। तो चमक ज्यादा कैसे होगी? जब वुजू में इन आज़ा को धोएंगे हम, ठीक है ना।
यूसुफ भाई, क्या वुजू का हुक्म कुरान पाक में भी है?
जी बिल्कुल है हारिस, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा कुमतुम इलस्सलाह फ़ग्सिलू वुजूहकुम व अय्दियकुम इलल मराफ़िक वामसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपने चेहरों को धो, अपने हाथों को धो कोहनियों समेत, ठीक है, और अपने सर का मसा करो और अपने दोनों पाँव को धो टखनों समेत, ठीक है।
इससे पहले ये तो नाक में भी पानी डालते हैं और कुल्ली भी करते हैं, इसका जिक्र कैसे है?
देखिए, ये जो मैंने आपको कुरान की आयत सुनाई ना शहबाज, इसमें चार चीजों का जिक्र है, चेहरा धोना और दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, सर का मसा करना, पांव धोना, ठीक है, चार चीजों का जिक्र है। ये चार चीजें जो है ना ये फर्ज हैं। वुजू में क्या है? यानी आपने अगर ये चार चीजें, तीन चीजों को धो लिया, सर का मसा कर लिया, आपका वुजू हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीजें जो ना वो सुन्नत है, कुरान की इस आयत में उन चार फर्जों का जिक्र है, बाकी कुल्ली का, नाक में पानी चढ़ाने का जिक्र जो है वो हदीसों में हमें मिलता है। तो कुल्ली भी करेंगे, नाक में पानी भी चढ़ाएंगे अच्छे तरीके से, जो ना फिर कानों का मसा करेंगे, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। ये जो चीजें हैं ना, ये किस में मिलती है हमें? हदीस में मिलती है, और ये सुन्नत है। अगर कोई नहीं भी करेगा तो उसको वुजू हो जाएगा, लेकिन सुन्नत के साथ वुजू करेंगे तो हमारा वुजू कामिल और मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है ना। आइए मैं आपको वुजू की ना फजीलत बताता हूँ। देखिए, वैसे प्यारे बच्चों, हमारा जो दीन है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पाकीजगी का, तहारत का, सफाई सुथराई का दर्स देता है। हमें साफ सुथरा रहना चाहिए, अपने जिस्म को गंदा नहीं रखना चाहिए, अपने लिबास को गंदा नहीं रखना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, ठीक है। और इसी तहारत का एक हिस्सा वुजू भी है। जब नमाज के लिए खड़े हों, جب نماز کا ارادہ کرے تو وضو کرنا ضروری ہے، وضو کے بغیر نماز درست نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اب اس وضو کرنے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے سبب اللہ تمہاری خطائیں معاف کر دے اور درجات بلند کرے؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ فرمایا، جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا، جس وقت وضو کرنا دل نہیں کر رہا ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا۔ فرمایا، مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کی فضیلت بتائی، اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، اور بہت ہی پیاری فضیلت ہے حارث، جب آپ وضو میں ہاتھ دھوتے ہو نا تو یہاں کے سارے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کلی کرتے ہیں تو منہ کے اندر کے سارے گناہ معاف، جب آپ ناک میں پانی چڑھاتے ہیں تو ناک کے اندر کے گناہ معاف، جب آپ چہرہ دھوتے ہو تو چہرے کے گناہ معاف، جب آپ ہاتھ دھوتے ہو تو ہاتھ کے گناہ معاف، اور جب آپ پاؤں دھوتے ہیں تو پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ وضو کرنے کے یہ فائدے ہیں۔
بھائی، معراج کسے کہتے ہیں؟
معراج کہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا تھا، اور اسی کو معراج کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دنیا میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکا، اپنے سر کی آنکھوں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکا۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے، تو آپ نے جنت کی بھی سیر کی۔ آپ جب واپس آئے نا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بلال تم ایسا کیا عمل کرتے ہو؟ میں نے جنت میں دیکھا تمہارے قدموں کی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ تم زمین پر چل رہے تھے، تمہارے چلنے کی آواز کہاں آ رہی تھی؟ جنت میں آ رہی تھی۔ تو ایسا کیا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال نے پتہ کیا عرض کی؟ حضرت بلال نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب میں بے وضو ہوتا ہوں نا تو وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کر لیتا ہوں تو دو رکعت تحیت الوضو ادا کر لیتا ہوں، ہے نا؟ تو جب بے وضو ہو تو وضو کر لیں، سوتے وقت باوضو سونا چاہیے، ہے نا؟ اسی طرح سے دن کا اکثر حصہ اگر ہو سکے ہمیں باوضو رہنا چاہیے، اس کی بہت ہی فضیلت ہے۔
صبح سردی میں تو وضو کرنے کا دل ہی نہیں کرتا۔
ہاں یہ بات تو ہے شہباز، جب آپ جناب وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، فجر میں اٹھے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے اور اب ہمت بھی نہیں ہو رہی ہے، کافی دیر تک سوچتے رہتے ہیں کہ بھائی میں کیسے وضو کروں، کیسے وضو کروں، کیسے وضو کروں، ہے نا؟ ہمت نہیں ہو رہی ہوتی نا، سردی لگ رہی ہوتی ہے، کپ کپاہٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو وضو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کا ثواب تو بہت بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سخت سردی میں وضو کرے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ تو اب یہ نہ سمجھیں کہ یار وضو چھوڑنے کی اجازت ہے، بلکہ زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے خوش دلی کے ساتھ وضو کرنا چاہیے۔ نہیں نہیں بھائی، میں تو وضو کروں گا، اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب مجھے عطا فرمائے گا۔ بھائی جس عمل میں اگر مشقت زیادہ ہوتی ہے نا، تکلیف زیادہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ثواب بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔
سبحان اللہ۔ یوسف بھائی، کچھ لوگ وضو کر کے آسمان پہ دیکھتے وہ کیا پڑھتے ہیں؟
ہاں حارث، کچھ لوگ پڑھتے ہیں، اور واقعی میں پڑھنا بھی چاہیے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آسمان کی طرف دیکھیں نہ دیکھیں، لیکن ویسے دعا پڑھنے کی فضیلت ہے۔ آئیے میں آپ کو وہ سناتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو وضو کرے، کامل وضو کرے، پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ اب دیکھیں، وضو تو کرتے ہی ہے نا، تو وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ شریف پڑھ لیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو یہ کلمہ پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا؟
آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے،
جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آپ جس دروازے سے چاہے جنت میں
داخل ہو جائیں گے۔ صبح اگر وضو ہمارا کرا ہو تو وضو کے اوپر ہم ایک اور وضو کر سکتے ہیں؟
یعنی وضو ٹوٹا نہیں ہے نا، اور دوبارہ وضو کرنا چاہ رہے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو پر وضو کرے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں.
سبحان اللہ.
تو وضو پر وضو کے بھی بہت فضیلت ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب وضو کرتے ہیں نا ہاتھ دھوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر کلی کرتے ہیں, ہے نا. اب وضو تو طہارت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا, اب آپ کو مسواک بھی کرنی چاہیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے مسواک, ہے نا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بہت پسند فرماتے ہیں, اور آج کل کے بچے نہ مسواک کرتے ہیں نہ برش کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی نماز کے لیے نہیں جاتے تھے, یہاں تک کہ مسواک کر لیتے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ بغیر مسواک کی ہوئی نماز سے 70 حصے زیادہ فضیلت والی ہے. تو جب آپ مسواک کریں گے تو پاکیزگی کی طہارت بھی زیادہ حاصل ہوگی اور نماز کا ثواب بھی بڑھ جائے گا ہمارے. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ مسواک کریں گے, انشاءاللہ ٹھیک ہے, مسواک کریں گے وضو کے لیے, وضو کے علاوہ سونے سے پہلے مسواک کر لیں, ٹھیک ہے, اٹھنے کے بعد مسواک کر لیں, کھانا کھانے کے بعد مسواک کر لیں. مسواک تو جتنا زیادہ کریں گے ثواب اتنا ملے گا. مسواک سے پتہ ہے حارث حافظہ مضبوط ہوتا ہے, نظر تیز ہوتی ہے, بلغم جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. الحمدللہ بہت فضیلتیں ہیں مسواک کرنے کی نا, عقل تیز ہوتی ہے. اسی لیے جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں مسواک کرنے کی عادت بنانی چاہیے. مسواک سے قوت حافظہ زیادہ ہوتی ہے, درد سر دور ہوتا ہے, سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے, اس سے بلغم دور ہوتا ہے, نظر تیز ہوتی ہے, معدہ درست ہوتا ہے, کھانا ہضم ہوتا ہے, بڑھاپا دیر میں آتا ہے اور پیٹ بھی مضبوط ہوتی ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں وضو میں کتنے فرض ہیں؟
وضو کے 4 فرض.
4 فرض ہیں, ایک ایک کر کے بتائیں گے, ٹھیک ہے. پہلا فرض کیا ہے؟
چہرہ دھونا
پہلا فرض ہے. آپ بتائیں دوسرا فرض؟
کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا
ماشاء اللہ. تیسرا فرض بتائیں؟
چوتھائی سر کا مسا کرنا
ماشاء اللہ. آپ بتائیں چوتھا فرض؟
ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا.
اور آپ پانچواں فرض بتائیں؟
پانچواں فرض نہیں ہے,
چار ہی فرض ہے نا. کتنے فرض ہیں؟
4
فرض ہیں, 5 فرض نہیں ہے. تو اگر آپ 4 فرض ادا کر لیتے ہیں تو آپ کا وضو ہو جاتا ہے. پھر دونوں ہاتھ پونچھوں سمیت دھونا, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں اب پریکٹیکل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھے. اب میں آپ سے باری باری پوچھتا رہوں گا, ٹھیک ہے نا. آپ نے اب پریزنٹ مائنڈ ہو کر بیٹھنا ہے. پیارے بچوں آپ بھی ریڈی رہے اور آپ بھی بولتے رہیں گے کہ وضو میں پہلے کیا کرنا ہے, پھر کیا کرنا ہے, پھر کیا کرنا ہے, پھر کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ بعض اوقات سیکھے ہوئے بچے بھی تو دوسروں کی اصلاح کر سکتے ہیں نا. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں, اس کے بعد ہمیں پریکٹیکل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نما کون ہے پتہ ہے؟ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نما کے
بیٹے
ہیں دونوں. اچھا بڑے بیٹے کا نام کیا تھا؟ بڑے بھائی کا نام کیا تھا؟
امام حسن.
اور چھوٹے بھائی کا نام کیا تھا؟
امام حسین,
ٹھیک ہے. اب چونکہ انہوں نے تو حضرت علی سے پرورش پائی ہے نا
جی,
انہوں نے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تربیت حاصل کی ہے. انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا, وہ وضو کر رہے تھے لیکن مسٹیک کر رہے تھے, وضو میں غلطی کر رہے تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے دیکھا, اب سوچا کہ اب ان کی اصلاح کیسے کریں, ان کو سمجھانا بھی ہے نا, ان کو سمجھانا بھی چاہیے لیکن ان کی اصلاح کیسے کریں. اب ان کو ڈائریکٹ بولنے کے لیے جاتے تو برا نہ لگ جائے گا, یار اتنے بچے ہو کے میرے مجھے سمجھانے کے لیے آ گئے ہو, ہے. تو اب انہوں نے پتہ کیا انداز اختیار کیا, یہ دونوں ان بزرگ کے پاس گئے, کہنے لگا کہ حضور ہم دونوں وضو کرتے ہیں اور آپ چیک کریں ہم دونوں میں سے صحیح وضو کون کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ دونوں نے وضو کرنا شروع کیا, دونوں نے بالکل صحیح وضو کیا. وہ بزرگ دیکھ رہے ہیں. جب انہوں نے وضو کر لیا نا تو بزرگ پتا کیا فرمانے لگے, بزرگ فرمانے لگے بیٹا آپ دونوں کا وضو صحیح تھا, میرا وضو غلط تھا. کتنے پیارے انداز پر دیکھیں ان کی اصلاح کی ہے نا. تو اگر ہمیں بھی سیکھنے کو مل جائے وضو اور ہم دیکھیں کہ کوئی مسٹیک کر رہا ہے ہمارے گھر میں سے, باہر کسی کو سمجھانے نہیں جائیں گے, ہمارے گھر میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی مسٹیک کر رہا ہے, بڑے بھائی مسٹیک کر رہے ہیں, تو پھر ان کو پیار سے سمجھائیں گے کہ بھائی ہم نے تو یہ سیکھا تھا مدنی چینل کے پروگرام میں, ہم نے تو یہ انداز سیکھا ہے یا ہم نے بک کے اندر تو یہ پڑھا ہے, آپ یہ مسٹیک کر رہے ہو یا مجھے سمجھا دو کہ کس طریقے سے کرنا چاہیے, میں نے تو یہ دیکھا تھا آپ جو کر رہے ہیں تو کیا وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب میں آپ سے پوچھوں گا آپ اس کو کیا کریں گے, بتاتے جائیں گے پہلے کیا کریں گے, پھر کیا کریں گے. یو آر ریڈی ہے بھائی, ٹھیک ہے. آپ وضو کرنے کے لیے آئے, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे मुझे बताएं?
सबसे पहले वजू करने की दुआ पढ़नी है।
बेहतरीन, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाही वल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त। ठीक है, ओके। इसके बाद?
इसके बाद कलाई या समेत दोनों हाथ धोने हैं।
ये पहुँचे हैं, क्या है
पहुंचे?
इसको कहते हैं पहुँचे, हाँ, पहुँचो समेत, पहुँचो तक हाथ धोने हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक और काम करना चाहिए, वो बेहतियाती करते हैं, आस्तीन नीचे होती है ना, कर रहे होते हैं, फिर इसके बाद नल खुला होता है और फिर इसके बाद आस्तीने चढ़ाते हैं, तो इसका क्या होता है, पानी इसराफ हो रहा होता है ना। तो सबसे पहले बस जब आप वजू करने के लिए आए ना, अपना इमामा या टोपी उतार कर रख दें, नंबर वन। नंबर टू, अपनी आस्तीने ऊपर तक चढ़ा लें, ठीक है ना, अपनी आस्तीने चढ़ा लेंगे, अब आप आराम से वजू कर सकते हैं, है ना
जी।
अब आप आराम से वजू कर सकते हैं, अब क्या करेंगे, दोनों हाथ पहुंचो समेत धोएंगे, फिर क्या करेंगे?
उसके बाद हमें कुल्ली करनी है तीन दफा, तीन बार, और उसके साथ मिसवाक भी करना है।
अब आपने मिसवाक करनी है, ठीक है ना, तो मिसवाक करेंगे अच्छे तरीके से, और तीन मरतबा क्या करेंगे, कुल्ली करेंगे,
कुल्ली करेंगे
अच्छे तरीके से, मुंह को साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, गड़गड़ा करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हादी साहब, बताओ?
नाक में पानी डालेंगे।
नाक में पानी कैसे डालेंगे? कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं या कोई कुछ यूं लगा देते हैं, खाली यूं तीन बार लगा देते हैं, तो क्या करना है? बल्कि नाक जो है पानी में डाल के सूंघना है, क्या करना है? सूंघना है, पानी को थोड़ा सा नाक में चढ़ाना है, और इसके बाद ये जो छोटी उंगली है ना, छुंगलिया, इसको फिर जो है उल्टे हाथ की, ठीक है, सीधे हाथ की इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, उल्टे हाथ की छुंगलिया को नाक में डालकर अच्छे तरीके से नाक को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, साफ सुथरा कर लेंगे नाक को। तो ये तीन मरतबा होगा, ठीक है ना, नाक में तीन मरतबा पानी डाल के साफ करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे?
मुंह धोएंगे।
मुंह ये वाला धोएंगे, ये वाला धोएंगे,
चेहरा धोएंगे,
चेहरा धोएंगे। ये क्या है, मुंह है, और ये क्या है,
चेहरा,
चेहरा है, ठीक है, फेस है आपका ना, चेहरे को धोना है। कितनी मरतबा धोएंगे, पांच मरतबा या आठ मरतबा?
पांच,
पांच मरतबा धोएंगे, आप बताए, पांच मरतबा या आठ मरतबा?
तीन मरतबा,
तीन मरतबा धोएंगे ना हारिश, आठ मरतबा, पांच मरतबा क्यों धोएंगे भाई? पांच मरतबा नहीं धोना है, बल्कि तीन मरतबा धोना है, यानी सुन्नत तरीका जो है वो यही है ना, जबकि इतने में आपका चेहरा धुल जाता हो। अब आपने अच्छे तरीके से पूरे चेहरे को धो देना है, और इसके बाद यहाँ तक के कोई भी हिस्सा यहाँ पर वो ना हो ना, कोई भी हिस्सा आपका खुश्क ना रह जाए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे आप बताएं शहबाज?
उसके बाद हमें कोनियों समेत दोनों हाथ धोने हैं तीन तीन मरतबा।
अच्छा, हाथ कैसे धोएंगे? कुछ लोगों को देखा है कि वो जो है ना नल के नीचे नलका खोलते हैं, फिर यूं 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 करते हैं, ऐसे देखा है, इस तरह करते हैं ना कुछ लोग, यूं 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 पानी फेंकते हैं
जी,
तो ऐसे नहीं कर सकते, क्यों
ऐसे नहीं कर सकते? हमारा वजू नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? इसलिए कि देखें यहाँ पानी जो है ना यूं बहेगा, आज यहाँ की जो जगह ना खुश करे जाएंगी,
कहीं कहीं पानी
पहुँचेगा, कहीं नहीं पहुँचेगा, तो पूरा हाथ धुलेगा नहीं। तो फिर बेहतर तरीका क्या है?
बेहतर तरीका ये है कि पानी में, हाथ में पानी लेकर इसे इस तरह पूरा यूं करके यूं कर लेना चाहिए, इस तरह फिर सारी जगहों पे लग जाएगा।
बहुत जबरदस्त, यानी जब आप नल के नीचे हाथ रखते हैं, बल्कि नल के नीचे हाथ रख दें और यूं धोते जाएं, ऊपर से नलका खुला हुआ होगा ना, आप धोते जाएं, फिर यहाँ से घुमाकर इसको यहाँ से धोते हुए ले आए, तो ये कोहनियों समेत आपका पूरा धुल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी कर लें, इसको पूरा जो है धो लीजिएगा, ठीक है ना, तो ये आपके दोनों हाथ धुल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करना है?
चौथाई सर का मसा करना,
चौथाई सर का मसा करना है, ठीक है। कैसे करेंगे?
सबसे पहले
कैसे करेंगे,
उंगलियों को
यानी यूं रखना है ना, ठीक है, ओके,
यूं रखकर पूरा,
यानी हथेली हथेली टच नहीं होगी ना सर पे,
हथेली टच नहीं होगी,
ये उंगलियां बीच में से जाएंगी ऐसे, ठीक है, ओके, करें।
इसके बाद यूं करके लेके जाना है,
ठीक है,
ठीक है, पूरा यहाँ तक,
पीछे तक लेके जाएंगे,
पूरा,
ठीक है,
फिर हथेलियों को यहाँ से यूं,
वेरी गुड, जबरदस्त,
यूं लाएंगे, फिर ये उंगली और अंगूठे को दोनों यूं करके साफ करेंगे, और उसके बाद दोनों हाथ का पिछला साइड, दोनों को एक को यूं करना, एक के,
वेरी गुड, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने इसको वो किया। देखें इस तरह से उंगलियां रखकर आप जो है जहाँ से बाल आपके उगना शुरू होते हैं, यहाँ से आप जो है पीछे लेकर जाएंगे, और इसके बाद ऐसे लेकर आना है ना, हथेलियों से यूं करके ऐसे लेकर आना, ये आपके पूरे सर का मसा हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर कान के सुराखों में छुंगलियां डालकर इस उंगली से आपने बीच के हिस्से को जो है मसा करना है, और कान की पुष्ट का अंगूठे से मसा करना है, ये हो गया, और इसके बाद ये हिस्सा रह गया, तो इससे आपने पुश्त का मसा कर लेना है।
जी, यूसुफ भाई कुछ लोग यहाँ का भी मसा करते हैं, ये कर सकते हैं
भाई? गर्दन का मसा नहीं कर सकते ना। कुछ लोग देखा देखी कर रहे होते हैं या गर्दन का मसा कर रहे हैं, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। ठीक है
यूसुफ भाई, कुछ लोग मुंह धोते वक्त फूके मारते हैं, ऐसा कर सकते हैं?
हाँ भाई, इस तरह से करते हैं कुछ लोग, तो देखा देखी ये तरीका नहीं करना चाहिए। जो तरीका यह बयान किया जा रहा है ना, इस तरीके के मुताबिक करना है। अमीर अहले सुन्नत ने पूरा प्रैक्टिकल करके अल्हम्दुलिल्लाह हमें दिखाया है, वुजू का पूरा प्रैक्टिकल करके मदनी चैनल पर हमें दिखाया है कि वुजू कैसे करना है। पूरा वुजू का अल्हम्दुलिल्लाह हमें प्रैक्टिकल सिखाया है। तो अब हम क्या करेंगे, मसा हो गया आपका, मसा करने के बाद क्या करना है बताएं?
टखनों समेत दोनों पांव
धोने हैं, जो उंगलियों के दरमियान का हिस्सा है ना उसमें क्या करना है, खिलाल करना है। उल्टे हाथ की छुंगलिया से सब उंगलियों के दरमियान में खिलाल करना है और इसके बाद पांव को अच्छे तरीके से धो लेना है। तो ये वुजू का मुख्तसरन हमने तरीका सीखने की कोशिश की है। और इसके बाद फिर क्या करना है वुजू के बाद?
अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
हां ठीक है, ये कलिमात पढ़ने हैं। इसकी फजीलत क्या मिलेगी? जन्नत के
आठों दरवाजे
खोल दिए जाते हैं, जिससे चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए।
यूसुफ भाई, सोते वक्त वजू करने की क्या फजीलियत है?
भाई सोते वक्त वजू की जो फजीलत है ना, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी फजीलत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया कि वजू करके सोने वाला ऐसा है जिससे रोजा रख कर इबादत करने वाला है ना। जो रोजा रख कर इबादत करते हैं, तो जो वजू करके सो जाए, अब इबादत तो नहीं कर रहा है, सो गया है, लेकिन फिर भी उसे रोजा रखकर इबादत करने वाले का सवाब मिल रहा होता है। बल्कि शहबाज, आपको बहुत प्यारी एक हदीस पाक सुनाता हूँ, इसके बाद तो इंशाल्लाह आप लोग नियत कर ही लेंगे कि अक्सर बावजू रहना है। ठीक है, वो फजीलत पता है क्या है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रजी अल्लाह तआला से फरमाया, बेटा अगर तुम हमेशा बावजू रहने की ताकत रखते हो, इस्तितरात रखते हो, तो ऐसा ही किया करो, क्योंकि मलकुल मौत जिस बंदे की रूह हालत वुजू में कब्ज करते हैं उसके लिए शहादत लिख दी जाती है। वुजू की हालत में जिसका इंतकाल होगा उसको शहादत का सवाब मिलेगा। कौन सा सवाब मिलेगा?
शहादत
का सवाब मिलेगा उसे। तो हमें भी चाहिए कि बावजू रहे। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला ने बावजू रहने की जो फजीलत बयान की है ना, सात फजीलतें बयान की है। कितनी?
सात
फजीलतें बयान फरमाई है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। चुनाचे फरमाते हैं कि बाज आरिफीन ने फरमाया, जो हमेशा बावजू रहे अल्लाह पाक उसको सात फजीलतें अता फरमाएगा। प्यारे बच्चों, आपने भी याद कर लेनी है फजीलतें, हो सके तो अपने पास नोट कर लीजिए। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं, नंबर वन, फरिश्ते उसकी सोहबत में रगबत रखेंगे, शौक रखेंगे उसकी सोहबत में बैठने का। नंबर दो, कलम उसकी नेकियां लिखता रहता है, यानी बावजू जो रहता है उसके लिए नेकियां लिखी जाती रहती है। उसके आजाद तस्बीह करते रहते हैं, उससे तकबीर उला फोत नहीं होती क्योंकि वजू पहले से रेडी है, फौरन जाकर नमाज में शामिल हो जाते हैं। जब सोता है तो अल्लाह ताला कुछ फरिश्तों को भेजता है कि जिन्नात और इंसानों के शर से उसकी हिफाजत करते हैं। और नंबर छह, सकराते मौत उस पर आसान हो जाती है, मौत की सख्ती उस पर आसान हो जाती है, और जब तक बावजू रहता है अल्लाह की अमान में रहता है। तो अब तो अपनी आदत बनानी नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों के, इंशाल्लाह अक्सर बावजू रहेंगे, जब भी वजू टूट जाए दोबारा वजू कर लेंगे, और बावजू सोएंगे, बावजू रहेंगे। अल्लाह ताला हमें इन बातों को याद रखने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमेशा हमें बावजू रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम। शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। जज़ाकल्लाहु खैरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व
बरकातुहु।
बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आप तशरीफ लाए हमारे प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व
बरकातुहु।
सल्लु अला अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सच्ची बात सिखाते हैं, सीधी राह चलाते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।